भागवतम महापुराण की, श्रील प्रभुपाद की, समस्त वैष्णव भक्त बिंद की जय। नदाई गौर प्रेम नंदे,
हरे कृष्णा। तो आप सभी का भागवतम क्लास में हार्दिक स्वागत है। और हमारे बीच में इस ग्रेस पूर्ण कांत प्रभु। तो वैसे पूर्णकांत को पहले एक दो बार आए हैं पंजाबी भाग में, लेकिन क्लास पहली बार दे रहे हैं इस्कॉन प्रयागराज में। पिछले 18 साल से प्रभु जी जो हैं राधा वेणी माधव की सेवा में सेवारत हैं। अनेक अनेक सेवाएं वहाँ करते हैं, बहुत सारे प्रचार करते हैं। वहाँ पे राधा वेणी माधव का बगीचा है, उसकी देखरेख करते हैं। टेम्पल कमांडर के रूप में सेवारत हैं कुछ समय से। लास्ट में पिछले एक दो सालों से डीटी वर्शिप डिपार्टमेंट को भी देख रहे हैं। अनेकों सेवाओं में रत हैं। हमारे अनेक भक्त प्रयागराज में जाते हैं, वहाँ पे जो है सेवा करने के लिए प्रयागराज में कुंभ मेले के दौरान। तो प्रभु जी हमारे लिए बहुत बढ़िया व्यवस्था कराते हैं दर्शन कराने के लिए। तो हम इनके साथ में और भी अनेक भक्त आए हैं, 5-6 डिवोटीज आए हैं प्रयागराज से। तो हम सभी का एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के हार्दिक स्वागत करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सबसे निवेदन है अपने मोबाइल फोन कृपया करके स्विच ऑफ कर लीजिए या साइलेंट मोड पे कर लीजिए। और साथ ही साथ हम इस्कॉन जुहू से आए 3 भक्तों का भी स्वागत करते हैं। हिज ग्रे श्री मोहन प्रभु, हिज ग्रे श्री बलदेव चंद्र प्रभु और श्री राम प्रिया प्रभु। तो एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के इन तीनों भक्तों का भी स्वागत करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ददो जयामुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भागवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नश्। स्कंद 10 अध्याय 3 श्लोक संख्या 40। इस अध्याय का नाम है कृष्ण जन। गते मयि युवां लब्ध्वा वरम वस्त्रादृशं सुतम् ग्राम्यां भोजान अभुष्यथाम् युवां प्राप्त मनोरथो गते मयि युवां लब्ध्वा वरं मत्सादृशं श्रुतं ग्राम्यां भोगान अभूचथाम् युवां प्राप्ता मनोरथो गते मयि युवां लब्ध्वा वरमस्यादृशं श्रुतं ग्राम्यां भोगान अभूषथाम् युवां प्राप्त मनोरथो। गते मयि मेरे चले जाने पर युवाम तुम दोनों को दंपतियों को लब्ध्वा पाकर वरम वरदान पुत्र प्राप्ति का मत श्रद्धम शुद्रम मेरी ही तरह के शुतम पुत्र को ग्राम्यां भोगान भोग विलास में व्यस्त रहना अभुथनाम भोग किया युवाम तुम दोनों को प्राप्त प्राप्त करके मनोरथो अभिलाषाएं। इस श्लोक का अनुवाद होता है श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। जब तुम वर प्राप्त कर चुके और मैं अंतर ध्यान हो गया तो तुम मुझ जैसा पुत्र प्राप्त करने के उद्देश्य से विषय भोग में लग गए और मैंने तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी। तात्पर्य, संस्कृत के शब्दकोश अमरकोश के अनुसार विषयी जीवन ग्राम धर्म कहलाता है, लेकिन आध्यात्मिक जीवन में इस ग्राम धर्म को अत्यधिक सहारा नहीं जाता। यदि किसी में भोजन करने, सोने, मैथुन करने तथा रक्षा करने की रंच भर भी लालसा रहती है तो वह निष्किंचन नहीं रहता, किंतु मनुष्य को निष्किंचन होना चाहिए। अतः संभोग द्वारा कृष्ण जैसा पुत्र उत्पन्न करने के लिए इच्छा से उसे मुक्त होना चाहिए। इस श्लोक में अप्रोक्ष रूप में यही इंगित किया गया है। ओम हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों से निवेदन है, अनुरोध है कि भक्तों के मध्य बैठ करके कृष्ण चर्चा श्रीमद् भागवतम का विचार विमर्श करेंगे और आप अपना कृपा दृष्टि प्रदान करें जिससे हम कुछ बोलने में समर्थ हो सकें। हरे कृष्ण। तो ये विषय चल रहा है कि किस प्रकार से एक उत्तम पुत्र प्राप्त करने के लिए उत्तम तपस्या की आवश्यकता है। कहीं कहीं पर वर्णन आता है कि प्रश्नी सुतपा जी ने पुत्र प्राप्ति के लिए तप किया। कई वर्णन आता है कि परम सत्य की खोज के लिए या मोक्ष के लिए तपस्या किया। और जब उन्होंने भगवान का दर्शन किया तो फिर उनकी लालसा हो गई पुत्र में, इच्छा बदल गई, वात्सल्य भाव उनका उमड़ गया और भगवान को पुत्र के रूप में इच्छा प्रकट कर दिया। तो तीन बार कहते हैं रिपीट किया था, इसलिए भगवान ने कहा ठीक है, हम तीन बार आपके पुत्र बन करके आएंगे और आपको वात्सल्य का प्रेम प्रदान करेंगे। तो हम देख सकते हैं कि इस इतिहास में कि भगवान जैसा पुत्र प्राप्त करने के लिए कितना घोर तपस्या किया वर्णन है। पिछले श्लोक में श्रवण कर चुके हैं हम लोग, कड़ी धूप में, बरसात, जाड़ा, किस प्रकार से मौसम को सहते हुए और सूखे पत्ते इत्यादि खा करके तप किया। अभी तो मन से भी इतना तपस्या कर पाना संभव नहीं हो पाता है, जो कि कली काल में मन के द्वारा जो तपस्या है उसका फल मिलता है, लेकिन मन से भी तपस्या करने के लिए वो उत्साह उत्पन्न नहीं हो पाता। आम व्यक्ति में, भक्तों में तो होता है, भक्त लोग तो मन से भी पुण्य इत्यादि करते ही रहते हैं, लेकिन आम व्यक्ति की चेतना वो इस स्तर पर नहीं है कि मन से ही खूब बड़े बड़े विशाल भंडारा करें, खूब दान पुण्य करें, अपने सामर्थ्य से भी ज़्यादा, है ना। वासुदेव जब जेल में थे तो आप देखिए कुछ नहीं था, परंतु मन से ही अंदर से इतनी गायें दान, इतना मोहर, स्वर्ण मोहर दान, इतने इतने ब्राह्मणों को अनेक अनेक प्रकार का उपहार प्रदान, ये सब जेल में ही प्रदान कर रहे थे। तो मन से भी दान कर रहे हैं तो उसकी भी, उसका भी एक आनंद है। अब जैसे हम लोग को पता है कि मन से कलिकाल में मन के द्वारा किया गया सब पुण्य कर्म का फल बनता है, तो आप देखिए कितना हमारा मन जो है प्रयास करता है कि आज पूरे दिल्ली को मैं भंडारा कराऊंगा, ऐसा कितने लोग का मन रोज करता है, बहुत ना के बराबर। तो मन के द्वारा भी इतना बड़ा पुण्य होता नहीं है, फिर ऐसे तपस्या करना कितना कठिन है। तो उत्तम पुत्र प्राप्त करने के लिए शास्त्रों में उत्तम तपस्या बताया गया है। यदि हम उत्तम तपस्या करेंगे तो उसका उत्तम परिणाम प्राप्त होगा। और कृष्ण को चाहिए तो कृष्ण के लिए तो फिर अद्भुत तपस्या करना ही पड़ेगा। व्यक्ति आमतौर पे तीन गुण के अनुसार ही अपनी सृष्टि रचना करता है। अभी प्रेजेंट टाइम में अधिकांश लोग को केवल एक ही रस्म पता है और वो है गृहस्थ जीवन। गृहस्थ मतलब सबकी इस प्रकार की मानसिकता है कि गृहस्थ जीवन मतलब अगर हो गया गृहस्थ जीवन तो सब कंप्लीट हो गया, अब और कुछ करना बाकी नहीं रह गया है। गृहस्थ जीवन तक ही बस सीमित है, मतलब जितनी रस्में निभाई जाती हैं, अगर विवाह हो गया है तो माता पिता समझते हैं अब हमारा कर्तव्य पूरा हो गया है, लेकिन इस रस्म से अतिरिक्त भी तीन रस्म और है। वो क्या है? पहला है ब्रह्मचारी, पहला स्तर। सेकंड है गृहस्थ, थर्ड है वानप्रस्थ और चौथा है संन्यास। हमारे भाई का विवाह होने वाला था तो हमसे आए विचार विमर्श करने के लिए कि विवाह होने वाला है, कुछ मार्गदर्शन करिए। तो हमने कहा कि ऐसा करिए, अभी उसमें ब्रेक लगा दीजिए, कम से कम 2 साल का ब्रेक लगा दीजिए। गृहस्थ जीवन से पहला भी एक स्टेप है, पहले उसको कंप्लीट कर लीजिए, अच्छे से समझ जाइए, फिर उसके उपरांत विवाह करिए। तो उनको बताएं कि उससे पहले ब्रह्मचर्य का स्तर किस प्रकार होता है। अभी गृहस्थ जीवन क्या है? वो है सिर्फ 4-व्हीलर की गाड़ी, 4 पहिए का जीवन। यदि आपको 4 पहिए का चाबी दे दें गाड़ी का और आपको ड्राइव करना नहीं आता है तो फिर चलाएंगे या तो तुरंत एक्सीडेंट हो जाएगा या कुछ क्षण के बाद फिर उसका क्लेश जो है भोगना पड़ेगा। तो ग्रस्त जीवन भी ऐसा ही है, इसीलिए अधिकांश लोग जो ग्रस्त जीवन में जाने के बाद डिस्टर्ब होते हैं वो यही रीज़न है मेन, कि पहला कंप्लीट नहीं हो पाता। ऐसा कहते हैं कि जिसका ब्रह्मचर्य जीवन एक नंबर का जाएगा उसका गृहस्थ जीवन भी एक नंबर का जाएगा, और जिसका गृहस्थ जीवन एक नंबर का व्यतीत होगा उसका वानप्रस्थ भी एक नंबर का जाएगा, और जिसका वानप्रस्थ एक नंबर का जाएगा उसका संन्यास भी एक नंबर का जाएगा। लेकिन अगर पहला न्यू ही खराब है तो फिर बाकी लोड जितना डालेंगे वो सब क्या हो जाएगा, सब धराशायी हो जाएगा। तो ब्रह्मचर्य स्तर में क्या शिक्षा मिलती है? इंद्रियों को संयम करना, इंद्रियों को जीतना, पहला स्टेप। जो व्यक्ति इंद्रियों को जीत सकता है, इसलिए जो प्राचीन वैदिक पद्धति है वो है 25 साल तक गुरुकुल में रह करके ब्रह्मचर्य का पालन करना। फिर व्यक्ति गृहस्थ जीवन में जाता है तो उसको सारा फार्मूला पता रहता है कि कौन कौन सी समस्या आएगी गृहस्थ जीवन में, तो पहले से ही वो सब तैयारी किए रहता है कि अगर ये समस्या आई तो हम ऐसे निकल जाएंगे, क्योंकि सब फार्मूला पता हो गया है। लेकिन जिनको नहीं पता है उनके लिए बड़ा क्लेश में हो जाता है। तो गुरुकुल की ऐसी शिक्षा प्रणाली है कि आत्मसंयम, इंद्रियों को जीतना। आप देखिए भगवान ने गीता में केवल एक श्लोक ही गृहस्थ जीवन में जाने के लिए स्वीकृति दी है, वो भी इनडायरेक्ट है ना। धर्म बुद्धेयो भूतेषु कामो अस्मि वरत श्रवा, केवल एक श्लोक है जो इनडायरेक्ट, भगवान डायरेक्ट भी जाने का आदेश नहीं दे रहे हैं। पूरे गीता में एक श्लोक है जो गृहस्थ जीवन में जाने के लिए भगवान आदेश दे रहे हैं। अच्छा, गृहस्थ जीवन से निकलने के लिए कितने श्लोक बोले गए हैं? सैकड़ों श्लोक। आत्मसंयम, इंद्रियों को जीतो, सैकड़ों श्लोक। अब आप सोचो कि उन 100 श्लोक पर एक श्लोक भारी पड़ जाता है, और कहीं भगवान डायरेक्ट आदेश दे दें तब कैसे लोग जाएंगे। पूरे शास्त्रों में आप देखिए कि इंद्रियों को जीतो, संयम करो, संयम करो, संयम करो। बिना इंद्रियों को जीते आप जो है भगवत भक्ति में मन भी नहीं लगेगा, बुद्धि भी नहीं लगेगी, मन हमेशा डिस्टर्ब रहेगा, पूरा आदेश यही है मेन। लेकिन इंद्रियां इतनी बलवान है कि व्यक्ति किस प्रकार से एक्सीडेंट हो जाता है कल्पना नहीं कर पाते हैं। और फिर अनेक अनेक प्रकार की मानसिकता धारण करके ग्रस्त जीवन में प्रवेश करते हैं, ठीक है, ग्रस्त जीवन। और उसमें भी फिर ऐसा लोगों का मानना है कि ग्रस्त जीवन ही सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा, मतलब तीनों अन्य जो ब्रह्मचारी है, वानप्रस्थ है, सन्यासी है, ये सब तीनों आश्रित रहते हैं गृहस्थों पर। तो उनको इस प्रकार का गर्व रहता है कि ये विवाद बहुत चलता है समाज में प्रचार करने में कि अरे हम ही लोग के ऊपर तो टिके हुए हो। तो ऐसा रहता है उनकी मानसिकता कि ग्रस्त जीवन न हो तो कुछ भी नहीं रहेगा। अब वो अपनी धारणा है, ठीक है, धारणा करे रहिए। यदि वर्णाश्रम के अनुसार आप परखेंगे कि कौन सबसे ज्यादा कठिन है, तो सबसे ज्यादा कठिन तो संन्यास धर्म ही है। जब संन्यास धर्म के विषय में पता चलेगा किस प्रकार से पालन करना है तो हिम्मत छूट जाती है कि केवल भगवान का आश्रय लेकर हमें रहना है अब समाज में, या निर्जन स्थान में भी हमें रहना है तो अब समाज का आश्रय त्याग करना है। वो इतना सरल नहीं है। तो व्यक्ति अपने गुण के अनुसार सृष्टि तो कर लेता है, ठीक है, उत्तम सृष्टि तो सतोगुण के ही अधीन है। सतोगुणी व्यक्ति अच्छी सृष्टि करता है क्योंकि ज्ञान से पूरा परिपक्व रहता है, सब समझता है, बुझता है। सतोगुण की जो मानसिकता होती है वो थोड़ी होती है, मतलब थोड़े में ही बहुत प्रभावशाली होती है, और रजोगुण और तमोगुण उनकी मानसिकता होती है कि उनको बहुत चाहिए लेकिन प्रभावहीन चाहिए। जैसे आप, एक घटना याद है आपको, कश्यप जी की दो पत्नियां कद्रु और विनीता। कद्रु किस प्रकार से कश्यप जी को टॉर्चर करके सहवास किया संतान हेतु, और उसके उपरांत उसको 1000 पुत्र मिले सर्प योनि जो उत्पन्न हुई। तो जब इस पुत्र प्राप्ति के स्थिति को देखा तो विनीता बोली कि आप हमें भी संतान दीजिए, जब कद्रु को दिए हैं तो हमें भी दीजिए, नहीं हम संतानहीन रहेंगे। अब शास्त्रों में बताया गया है कि जो व्यक्ति संतान पुत्र उत्पन्न नहीं करता है वो नरक का भागीदारी होता है। तो पुत्र प्राप्त करने पर उसको पूत नामक कोई नरक होता है, उससे मुक्ति मिल जाती है। तो इस भाव से लोग जो है पुत्र के प्रति जो है उत्पन्न करने के लिए काफी प्रयास करते हैं। तो विनीता भी बोली कि हमें भी पुत्र चाहिए, हमें भी संतान चाहिए। तो कश्यप जी ने कहा कि ठीक है, संतान दूंगा, तुम्हें कितना चाहिए? तो बोली जैसे कद्रु को अपने दिया है 1000 संतान, वैसे हमें भी दीजिए, हमें भी ज़्यादा चाहिए। तो कश्यप जी ने कहा कि ये अभी ठीक से समझ नहीं पा रही है, ये भी जो है उसको देखी देखा जो है इसका भी भाव उमड़ गया। तो कश्यप जी ने कहा कि देखो, बहुत की आवश्यकता नहीं है। अच्छा ये बताओ कि तुम्हें 10,000 चाहिए या 10,000 के बराबर एक चाहिए? तो वो सोच में पड़ गई, 10,000 चाहिए या 10,000 के बराबर एक चाहिए, मतलब एक ही हो लेकिन 10,000 के बराबर उसकी बुद्धि हो, क्षमता हो, बल हो। तो कुछ देर सोचने के उपरांत बोली अच्छा ठीक है, एक ही चाहिए। तो जब इस प्रकार इच्छा व्यक्त किया तो उन्होंने जो है एक पुत्र दिया, लेकिन उसमें भी जो है विनीता ने लापरवाही कर दिया। क्या कर दिया उसमें? वो गर्भ कंप्लीट नहीं हुआ था, इतनी ज्यादा ममता थी कि वो समय से पहले ही प्रसव करवा दिया। तो उससे जो पुत्र उत्पन्न हुआ वो अर्ध, मतलब आधा भाग उसका पूर्ण था ऊपर का, और नीचे का हिस्सा उसका कंप्लीट नहीं था। तो जब ये स्थिति देखा, जल्दी जल्दी में लापरवाही हो गया, तो उसको बड़ा दुख होने लगा कि देखो मैं जल्दीबाजी में जो है क्या कर दिया। होता है ऐसा, बहुत सारा ऐसा उदाहरण है, इसलिए कहते हैं जल्दी का काम शैतान का होता है। तो इतना जल्दी किया और जो है पुत्र आधा ही कंप्लीट हुआ। तो अरुण जी ने कहा, माता आपने हमारा जीवन खराब कर दिया, थोड़ी सी लालसा के लिए आपने ठीक नहीं किया। तो उन्होंने श्राप दे दिया अरुण जी को, जाओ तुम जिसके देश के कारण आपने ऐसा किया, अब उसी की दासी बन करके तुमको रहना पड़ेगा। कद्रू की ऐसे लापरवाही किसने किया? इसी प्रकार गंधारी ने किया। गंधारी की इच्छा थी कि मेरा पुत्र पहले हो, और उन दिनों की परंपरा है जो ज्येष्ठ पुत्र होगा उसी को युवराज बनाया जाएगा। अभी पता चला कि उधर कुंती का पुत्र हो गया तो इतना जलन हो गया उसको इस बात को सुनकर के, और क्रोध में आ करके अपने गर्भ में 100 प्रहार किया, मतलब गर्भ नष्ट हो जाए। सोचिए ऐसी सी माताएं होती हैं। 100 प्रहार किया, वो 100 भाग में पूरा पिंड जो है बिखर गया। अच्छा, पिंड बिखर गया तो फिर और उसको पीड़ा उत्पन्न हो गई। अब ये भी नहीं उसने माइंड किया कि पीड़ा तो हमें ही झेलना पड़ेगा, अगर गर्भ में भी बच्चा मर जाएगा तो क्या करेंगे, हमें नहीं जो है उसका पीड़ा सहना पड़ेगा, हो सकता है इसमें प्राण भी चला जाए, है ना, और होता ही ऐसा है। इलाहाबाद की एक घटना है, माता जी जो है वो पुत्र प्राप्ति के लिए बड़ा इच्छा की थी, अब पता चला जो है वो पुत्र नहीं है पुत्री है, तो उसने क्रोध में आकर के इतना ज़्यादा ब्रोफेन के टेबलेट खा लिया कि नष्ट हो जाए। और हुआ क्या कि पुत्र तो पुत्री तो नष्ट नहीं हुई, लेकिन वो माँ का ही जो है पूरा इन्फेक्शन के कारण जो है बुरा हाल हो गया। फिर ले गए उसको हॉस्पिटल, एडमिट किए, किसी प्रकार से बिटिया तो बच गई, लेकिन बिटिया के पूरे शरीर में उसका प्रभाव जो ब्रोफेन टेबलेट का था उसका पूरा धब्बा धब्बा हो गया पूरे शरीर में, अभी भी है वो। ये घटना जब सुना दंग रह गया, बताइए। अभी भी प्रेम नहीं है उससे, वो बस देख करके उससे जलती रहती है कि पुत्र क्यों नहीं हुआ, पुत्र क्यों नहीं हुआ, पुत्र क्यों नहीं हुआ। तो गंधारी ने जब इस प्रकार प्रहार किया तो उसका परिणाम बहुत खतरनाक हो गया। चर्चा इतनी ज़्यादा फैल गई कि ऐसा कर लिया, ऐसा कर लिया। और उन दिनों सबसे बड़े जो डॉक्टर थे वो कौन थे? व्यास जी थे, सबसे बड़े आयुर्वेदाचार्य व्यास जी थे। व्यास जी को इमरजेंसी में बुलाया गया। ऐसी कर्मचारी गंधारी मर जाएगी, है? ऐसा कर लिया। तो उन्होंने आ करके फिर जो है उसको किस प्रकार से जो है 100 गढ़ों में स्थापित किया पिंड को, और उसी से 100 जो है पुत्र कौरव उत्पन्न हुए। तो देखिए आप, द्वेष के कारण कितनी बड़ी लापरवाही है, साधारण नहीं है, ये बहुत बड़ी घटना है। ऐसा समाज है, पुत्र हो रहा है तब भी डिस्टर्ब है, नहीं हो रहा है तब भी डिस्टर्ब है। तो बिंता ने कहा ठीक है, हमें 10,000 के बराबर एक ही पुत्र चाहिए, एक प्रभावशाली हो, है ना। एक्चुअली में जो तमोगुणी लोग होते हैं, तमोगुणी लोग बहुत चाहिए उनको, लेकिन क्वालिटी नहीं चाहिए, क्वांटिटी बहुत चाहिए, ठीक है, कोई भी किसी भी क्रिया में आप देखेंगे, भोजन चाहिए उनको तो जब जाएंगे मार्केटिंग करने के लिए तो पहले तो देखें सबसे सस्ता वाला आइटम कौन सा है, है ना, जो सबसे सस्ता है उसको पूरा स्टोर करेंगे, ले आएंगे। जो सड़ा गला भी है, जो डिफेक्टिव है, उसको लेते हैं और ले करके उसको ज़्यादा बनाते हैं, और ज़्यादा खाने की हैबिट है तो तमोगुणी लोग ज़्यादा खाएंगे, लेकिन क्वालिटी नहीं है। जो सतोगुणी व्यक्ति है वो जाएगा बिल्कुल फ्रेश माल लेगा, कम खाएगा। सतोगुणी व्यक्ति का जो आहार होता है कम होता है, थोड़ा होता है, तो क्या करता है, थोड़ा लेगा लेकिन बढ़िया खाएगा, और जब बढ़िया खाएगा तो उससे शरीर भी हिट एंड फिट रहेगा। तमोगुणी व्यक्ति बहुत खाएगा, सोचता है हमने पैसा बचा लिया है, लेकिन वो इनडायरेक्ट कैसे पैसा निकलता है, सब मेडिसिन में निकलता है। तब बताइए किसको घाटा है किसको मुनाफा है। एक तो सड़ा गला खाएंगे और फिर वो अनेक प्रकार का रोग जो है उत्पन्न करेगा, और फिर उसके लिए चलिए डॉक्टर के यहाँ लाइन लगाइए, बैठिए, समय खराब करिए, आओ लंबी लंबी फीस दीजिए डॉक्टर को, और फिर जहर से भरा हुआ दवाई कड़वी कड़वी खाइए। तो उससे अच्छा है कि क्यों ना अच्छा ही आइटम खाएं, कम खाएं, कम खाएं, हष्ट पुष्ट रहेंगे, है। अब ऐसी मानसिकता होती है तो तमोगुणी व्यक्ति को ज़्यादा चाहिए, मतलब हर एक चीज में ज़्यादा ज़्यादा ज़्यादा, जनसंख्या खूब बढ़ाओ खूब करो। आजकल तो इतना नारा लगता है इस विषय में कि सोच नहीं सकते, खूब जनसंख्या है इतना। एक तो आजकल प्रयागराज में तो इसका पूरा भंडार है, है? अब बड़े आचार्य, बड़े बड़े आचार्य, जनसंख्या बढ़ाओ नहीं तो देश हाथ से छिन जाएगा। इतना भाई अब ऐसा ऐसा अनाउंसमेंट होता है जनसंख्या बढ़ाने के। अब प्रभुपाद जी ने देखिए कि वो जनसंख्या बढ़ाने के लिए इतना प्रयास कर रहे हैं, और प्रभुपाद जी ने पूरे वर्ल्ड में कितने सारे लोगों को सनातन धर्म से जोड़ दिया। अब एक योद्धा ने इतना विशाल काम कर दिया, वो इनके प्रभाव को नहीं समझ में आ रहा है कि किस प्रकार से जनसंख्या बढ़ाना है, है ना। अब इससे बड़ी जनसंख्या कौन बढ़ा सकता है, शुद्ध भक्त के रूप में, वैष्णव के रूप में इतने सारे अनुयायी हो गए। तो जो तमोगुणी मानसिकता है वो है बहुत चाहिए, लेकिन क्यों चाहिए, अपने विनाश के लिए चाहिए। सतोगुणी व्यक्ति जो है ऐसा नहीं होता, सतोगुणी व्यक्ति का हर एक क्रिया बहुत ही सोच विचार करके होता है और हर एक संस्कार से युक्त होता है। किस समय पे कौन सा संस्कार करना है उस सब, और नहीं तो उसका जो परिणाम है वो फिर खतरनाक हो जाता है। चंचलता के कारण, रजोगुण के कारण, तमोगुण के कारण व्यक्ति आगे चल के बहुत परिश्रम करना पड़ता है, फिर उसको बहुत दुख भोगना पड़ता है। अरुण जी जैसा जो है फिर पुत्र प्राप्त होगा, फिर श्राप लगेगा, फिर उसका एक दंड और। इसी प्रकार से जो है दिति ने भी जल्दीबाजी किया, कश्यप जी मना कर रहे थे कि देखो अभी ये समय नहीं है, अनुकूल नहीं है, आप थोड़ा धैर्य रखो, अगर आपको उत्तम पुत्र चाहिए तो जैसा शास्त्रों में वर्णन है उस विधि से हम लोग सहवास करेंगे। परंतु उसने जिद पकड़ लिया, धोती पकड़ के खींचने लगी, नहीं 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 नहीं, सब आप बहाना है, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। तो इस प्रकार जब उसका आचरण देखा तो फिर विवश होकर के लाचार हो गए कि ठीक है, तुम्हारी अगर ऐसी मानसिकता है तो ठीक है। तो उस मानसिकता में आज समय में किया गया कर्म उनके लिए बड़ा ही खतरनाक उत्पन्न हुआ और उससे दो महाअसुर उत्पन्न हुए जो सबको पीड़ा देने वाले और स्वयं परिजन को भी पीड़ा देने वाले। ऐसा भी नहीं है कि केवल बाहरी लोग को पीड़ा देंगे, स्वयं को भी, माता पिता को भी पीड़ा देने वाले। तो इसका परिणाम क्या होता है, वो खतरनाक हो जाता है। पुत्र प्राप्ति करने की सबकी नेचुरल इच्छा है। देखिए, सब लोग अपने आप को जो निस्सहाय अवस्था में समझते हैं, सबकी इच्छा है कि कुछ न कुछ ऐसा वातावरण होना चाहिए कि हम किसी के साथ समय काट सकें, है ना। समय काट पाना इतना सरल नहीं है, तो है नेचुरल इच्छा है तो ठीक है। गृहस्थ जीवन भी बढ़िया है, गृहस्थ जीवन में बड़े उत्तम उत्तम भक्त हुए हैं। तो गृहस्थ जीवन हमें स्वीकार करना है, लेकिन वो भक्तिमय वातावरण होना चाहिए। खूब बढ़िया बढ़िया जो है संतान उत्पन्न करके उनको खूब प्रचार कर, और ऐसा संतान उत्पन्न करना चाहिए जो माता पिता से ज्यादा प्रभावशाली हों। इस विषय में संतान उत्पत्ति करने के लिए ये भी एक समस्या है कि अगर आप बहुत बढ़िया लेक्चर दे देंगे तो फिर आपके पास फोन आएगा, प्रभु जी हमें भी उत्पन्न करना है, मार्गदर्शन करिए। ये भी एक समस्या। तो ये विषय तो ऐसे एक्चुअली तो बढ़िया से ग्रस्त लोग को ही जो है बोलने का विषय है, नहीं उस विषय में मार्गदर्शन करेंगे तो फिर अरे बोला ही होगा है ना, न जाने कितनी विकेट गिर जाती है। मार्गदर्शन करने में ही जो है चले जाते हैं। बहुत बढ़िया प्रवचन कर रहे थे प्रभु जी, बहुत सुंदर बता रहे थे, ग्रसियों के चला बताते बताते वो भी जो है लुल्लु पुल्लु जो है चू चू मुम्मू खिला रहे हैं, बहुत सुंदर। कहें अब कुछ प्रैक्टिकल भी होना चाहिए ना, अभी तो थ्योरी हमने बता दिया तो कुछ होना चाहिए। तो ऐसे करते करते तो फिर हो जाता है काम। ये भी एक गंभीर विषय ही है बताना कि कैसे जो है करना चाहिए। तो हम देख सकते हैं कि गृहस्थ जीवन एक्चुअली भगवान कहते हैं सुसुखम कर्तुम अव्ययम्। अगर आप बढ़िया से सुख पूर्वक भक्ति मार्ग में चलेंगे और सबको कृष्ण ने से जोड़ करके और ऐसा वातावरण उत्पन्न करेंगे बिल्कुल भक्ति में वातावरण, तो वो सबके लिए सहज है, अनेचुरल है। ठीक है, आसक्ति है, नेचुरल आसक्ति है। लोग क्या क्या पुत्र प्राप्ति के लिए कितना कितना मन्नत मानते हैं। अभी तो इस एक्चुअली भौतिक स्तर पे तो सब स्वार्थ है ना। पुत्र प्राप्ति की भी इच्छा है वो सब स्वार्थ ही है। अरे एक भक्त हैं, वो नाम नहीं लेंगे, उन्होंने 4 पुत्र उत्पन्न किया। तो उनकी मानसिकता कैसी है वो भी सुनिए जरा। पहले पुत्र को बनाया, पुलिस विभाग में डाला। दूसरे पुत्र को डॉक्टर बनाया। तीसरे पुत्र को वकील बनाया। चौथे को पर्सनल अपनी सेवा में लगाया। तो एक दिन हमने पूछा, प्रभु जी आपने ऐसा क्यों किया। सही से वो हर बार टाल देते थे, नहीं, ऐसे बस डालने में मन था, नहीं कुछ तो गोपनीय बात है, कृपया बताइए। तो एक दिन बड़े भाव में थे तो कहें कि अच्छा मैं बताता हूँ। देखिए आप जान रहे हैं कली काल चल रहा है, समय का कोई भरोसा नहीं है। वकील इसलिए बनाया कि अगर मैं कोई केस में फंस गया तो मेरा ई बेटा मुझको बचाएगा, ने दूसरे वकील तो इतना लूट लेंगे कोई भरोसा नहीं है। तो इस भावना से उन्होंने वकील बनाया। डॉक्टर क्यों बनाया? बोले आजकल बाहर के डॉक्टर पर कोई विश्वास रही नहीं गया है, छोटा सा बीमारी है इतना लंबा जो है उसका ये टेस्टिंग करवाओ, ये टेस्टिंग करवाओ, ये टेस्टिंग करवाओ, इतना पैसा फालतू जाएगा, उससे अच्छा है हमारा पुत्र मार्गदर्शन करेगा। नहीं पिताजी, सब फालतू है, सब लूटा जाएगा आपको, आप ये इलाज करिए तो उससे हमारा पैसा बच जाएगा। अब पुलिस में क्यों डाला? मान लीजिए कभी क्रोधावेश में कभी कोई कुछ कर दिया, कुछ मर्डर कर दिया या हाथापाई लड़ाई कर दिया, तो कम से कम हमारा जो पुलिस वाला है वो हमें पिताजी आप घबराइए नहीं, हम हैं। अब एक को अपने पर्सनल सेवा में लगाया। तो अब ऐसी मानसिकता है स्वार्थवश, अगर हम फंसेंगे तो हमारा ये बच्चा हमारा हमें बचाएगा। और एक हमारे मंदिर के प्रिय भक्त हैं मिश्री लाल, उनके चार पुत्र हैं, तीन पुत्रियां हैं, और बड़े हर्ष में आनंद में रहते हैं और सबसे गाएंगे, प्रभु जी हमारे चार पुत्र हैं गोपाल, नंदलाल, कन्हैया और गोविंद, गोपाल, गोविंद, नंदलाल और कन्हैया। अब बिटिया का नाम क्या रखा है? राधा, ललिता और विशाखा। और सबके सामने जो नए प्रभु जी आएंगे, सबके सामने प्रभु जी सुनिए सुनिए, हमने अपने पुत्र का नाम रखा है गोपाल, नंदलाल, गोविंद, कन्हैया, बिटिया का। इतना मस्त होकर के वो बताते हैं कि लगता है जैसे बिल्कुल ब्रह्मभूत अवस्था में जो है बिल्कुल खोए हुए हैं। अब बड़ा प्रेम से बताते हैं वो। तो प्रभु जी यहाँ से जो जाते हैं सब जानते हैं मिश्री लाल को। तो उस सब के सामने जो है ऐसे गुणगान करता है कि देखिए हमने अपने बच्चों का क्या नाम रखा है प्रभु जी। और इतना आनंद में वो बतलाते हैं, आनंद है एक्चुअली भगवान का नाम लेने में तो आनंद, और हर समय वो तो बिल्कुल मस्त ही रहते हैं। तो भगवान का नाम रखना ये तो एक अपने आप में ही महा आनंद है। खूब सुंदर सुंदर नाम रखिए, ऐसे अलदा कितने सारे उदाहरण आप देख सकते हैं, चाहे जामिल का उदाहरण ही देख सकते हैं कि एक पुत्र का इनडायरेक्ट नाम रख करके और कितने भारी विपत्ति से अजामिल बच गए। और फिर जो जानबूझ करके मतलब शास्त्रों के अनुसार जो नाम रखते हैं उनका तो फिर कहना ही क्या। तो ये तो उत्तम गुण है, ठीक है, बढ़िया है, पुत्र संतान प्राप्ति की इच्छा है तो खूब बढ़िया से अपने संतान को एक नंबर का वैष्णव या एक नंबर का वैष्णवी बनाना चाहिए कि यदि हम चुत हो गए भक्ति मार्ग से तो ये हमें कॉन्फिडेंस है कि हमारी संतान हमें भव सागर से निकाल देगी। ये उत्तम थिंकिंग है और इस प्रकार से प्रशिक्षण देना चाहिए कि हम इस प्रकार से अपने बच्चों को गाइड करेंगे कि यदि हम भक्ति मार्ग में गिर गए, फॉल डाउन हो गए, तो फिर हमारा ये वारिस जो है निश्चित रूप से उसको इतना स्ट्रांग कर दीजिए बाल अवस्था से ही, बाल के गर्भ अवस्था से ही नारद जी जैसा कि वह आपको इस भव सागर से निकाल सके। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो अपने पुत्र या पुत्री के प्रभाव से भव सागर को क्रॉस किया है, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का, समय हो गया है, कुछ गलत कुछ शब्द बोले हों तो उसके लिए क्षमा कर दीजिए। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की, समस्त वैष्णव भक्तवृंद की, नेताई गौर प्रेमानंदे, हरे हरे बोल, हरे कृष्णा।